जब पाकिस्तान ने छम सेक्टर पर हमला किया तो भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल चौधरी चाहते थे कि पाकिस्तान के हमले का सामना अखनूर से आगे बढ़कर किया जाए, लेकिन जनरल हरबख्श सिंह ने जनरल चौधरी से कहा कि आप सरकार से मुझे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर लाहौर की तरफ बढ़ने की अनुमति दिलवाइए। जनरल चौधरी कुछ हिचकिचा रहे थे, लेकिन जनरल हरबख्श सिंह ने इस पर जोर देते हुए कहा कि अगर आप सरकार से ये बात नहीं कह सकते तो मुझे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिलने की अनुमति दीजिए। अंततः उन्हें 3 सितंबर को पंजाब का मोर्चा खोलने की इजाजत मिली। हरबख्श सिंह अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ ड्यूटी में लिखते हैं,
इस बीच पाकिस्तान को यह आभास देने के लिए कि हम अखनूर पर उसके हमले का जवाब देने जा रहे हैं, मैंने अपने इंजीनियरों को पठानकोट अखनूर सड़क की मरम्मत करने और जम्मू तवी के ऊपर के पुल को और मजबूत करने के आदेश दिए। इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि 3 दिन बाद जब हमने लाहौर की तरफ मार्च करना शुरू किया तो वो आश्चर्यचकित रह गए।
जनरल हरबख्श सिंह आगे लिखते हैं कि लड़ाई से 1 दिन पहले वो और उनकी पत्नी शिमला के उनके घर में एक ही शयन कक्ष में सो रहे थे।
जैसे ही मैं फोन उठाने के लिए उठा, मुझे अपनी पत्नी की 2 छींकें सुनाई दी। मैंने तुरंत उसी समय आधी रात को अपना पलंग दूसरे कमरे में लगवाया। बाद में पता चला कि मेरी पत्नी को जर्मन मीजल हो गया था, जो कि बहुत छूत की बीमारी है। मेरे लिए ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता कि ऐसे समय जब युद्ध चल रहा है मैं बीमार क्यों पड़ा हुआ हूँ। लोग तरह तरह की अटकलें लगाते। शुक्र है मैंने कमरा बदलने का वो फैसला ले लिया, वरना मुझे बहुत शर्मसार होना पड़ता।
हरबख्श सिंह की बेटी हरमाला गुप्ता, जो कि आजकल एक एनजीओ चलाती हैं, बताती हैं कि वो आम चेयर जनरल नहीं थे।
मैं उनको कहूंगी एक फील्ड कमांडर थे। उनका ये कहना था कि मैं फील्ड में जाना चाहता हूँ क्योंकि फील्ड में जाकर फिर मुझे असलियत जो है वो समझ पाएगी, पीछे बैठ कर नहीं, रिपोर्ट से नहीं। और वो ये भी मानते थे कि अगर कमांडर आगे जाएगा तो फिर दूसरे भी उत्साहित होंगे।
1965 के युद्ध में कई सामरिक मामलों पर उनके सेना अध्यक्ष जनरल चौधरी से मतभेद थे। उन्होंने एक बार जनरल चौधरी के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया जो उनकी नजर में एक गलत आदेश था।
9 सितंबर की रात 2:30 बजे सेना अध्यक्ष ने मुझे फोन मिलाया। उनका कहना था कि भारतीय सेना को पाकिस्तानी हमले से अलग थलग होने से बचाने के लिए मुझे अपनी सेना को ब्यास नदी के पीछे ले आना चाहिए। इसका मतलब था पंजाब के बहुत बड़े भूभाग, जिसमें अमृतसर और गुरदासपुर जिले भी थे, खाली कर देना। मेरी नजर में भारतीय सेना के लिए ये 1962 के चीन हमले से भी बुरा झटका होता। मैंने जनरल चौधरी से कहा, चूंकि ये रणनीतिक आदेश है इसलिए उन्हें इसे युद्ध भूमि में आकर ही देना होगा, वरना आप मुझे लिखित आदेश दीजिए। तय हुआ कि वो मुझसे अम्बाला में मिलेंगे। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जनरल चौधरी के जहाज के साथ एक एस्कॉर्ट जहाज भी था। मैंने स्टेशन कमांडर से उसी समय कहा कि सीमा पर लड़ रहे हमारे सैनिकों को रोज इस तरह के विमानों की दरकार होती है, आप इस जहाज को यहाँ वेस्ट कर रहे हैं। मैं और चीफ सीधे ऑपरेशन रूम में गए, जहाँ हम दोनों के बीच काफी गर्मा गर्मी हुई। एक समय वो इतने उत्तेजित हो गए कि मुझे कहना पड़ा कि क्या आपके लिए मैं से बियर मंगवाऊं, लेकिन मैंने उन्हें ये स्पष्ट कर दिया कि अगर वो कोई रणनीतिक आदेश देना चाहते हैं तो उन्हें मेरे साथ फ्रंट पर आना होगा और तब मैं तय करूंगा कि मैं उस आदेश का पालन करूंगा या नहीं।
सामरिक मामलों के एक और विशेषज्ञ के सुब्रमण्यम ने भी लिखा है कि जनरल चौधरी ने प्रधानमंत्री शास्त्री से भी ब्यास नदी के पीछे हटने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी थी। टीकाकार कुलदीप नैयर और इंदर मल्होत्रा ने भी बीबीसी को बताया कि अगर चौधरी की चली होती तो भारत को एक बहुत बड़े हिस्से से पीछे हटना पड़ता। भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीएन शर्मा याद करते हैं,
मेरे ख्याल में जनरल हरबख्श सिंह बहुत ही आला अफसर। लड़ाई के दौरान में एक आदमी को ढट के खड़ा होना और अपना कमांड चलाना जैसे ही वो चाहे, ये खूबी की बात है। वो किसी की नहीं सुन रहे थे। आर्मी चीफ को भी थोड़ा लगा कि देखो जब पाकिस्तान का हमला खेमकरण में सक्सीड हो गया तो ये ब्यास ब्रिज के लिए आएंगे तो थोड़े रिजर्व यहाँ होने चाहिए। हरबख्श सिंह बोला नहीं, मैं नहीं रिजर्व भेजूंगा, मेरा पंजाब में कुछ नहीं होगा। तो फिर आर्मी चीफ ने एक डिवीजन बिहार से लेके चाइनीज फ्रंट से वो लुधियाना तक पर सतलज वगैरह गांव दरिया तक एक पूरी डिवीजन खड़ी कर दी ताकि अगर यहाँ कोई हादसा हो तो फिर हम पंजाब की डिफेंस कर पाए। ये छोटी बातें हैं, लेकिन क्रेडिट ये है हरबक्स की कि लड़ाई के दौरान में लीडरशिप टॉप क्लास और बिल्कुल डट के खड़े रहना, कोई नहीं मतलब कि कोई पीछे हटे, ये ज़रूरी बात। पीछे हटने का एक हमारे लड़ाई में गिना जाता है विड्रॉल ऑपरेशन ऑफ वॉर। हमारे चार ऑपरेशन होते हैं, एडवांस, विड्रॉल, अटैक, डिफेंस, अंग्रेज़ों की सिखलाई। हम लोगों का कहना है, और ये तो हमारे स्टाफ कोर्स में जब हम इंस्ट्रक्टर थे ये हम लोगों ने शुरुआत की वहाँ बात सोच विचार कि हिंदुस्तान में विड्रॉल ऑपरेशन ऑफ वॉर नहीं होनी चाहिए, ये तो अंग्रेज़ों की सिखलाई है। उनकी लड़ाइयाँ दूसरे लोगों के देशों में होती हैं, उनकी लड़ाइयाँ यूरोप में होती हैं या हिंदुस्तान में होती हैं या बर्मा में होती हैं, इंग्लैंड में तो कोई लड़ाई हुई नहीं उनकी जब से जूलियस सीजर की बात थी। दूसरे के देशों से विड्रॉ करना ठीक है, उसकी देश है, हम निकल आओ लोगों को बचाओ अगली लड़ाई के लिए, लेकिन अपने देश में फौजों को विड्रॉ करना नामुमकिन है, क्योंकि वो हमारी ज़मीन है, हमारा घर है, गाँव वाले दूसरे वाले हमारे लोग हैं, हम कैसे उनको दुश्मन के हवाले करें। लड़ाई के दौरान में 65 में ये हरबक्स का एक मिसाल था कि नहीं हटे, खेमकरण पकड़ लिया आगे मसल उतर में रहेंगे, वो गया तो मैं दूसरा करूँगा डिफेंस, मैं नहीं हटूंगा यहाँ से, वो सबको कॉन्फिडेंस देता है।
जनरल हरबक्स सिंह की बेटी हरमाला गुप्ता उन दिनों किशोरी हुआ करती थी और शिमला में रहती थी।
हमने असॉल्ट किया था पाकिस्तान पे, एक नया बॉर्डर खोला था 1 सितंबर को, और मेरे फादर जानते थे कि वो असॉल्ट होने वाला है, लेकिन 1 सितंबर को उनको एक एंगेजमेंट था, उनका लंच एंगेजमेंट शिमले में, तो वो चाहते थे कि पैनिक नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने लंच एंगेजमेंट अटेंड किया और उसके बाद ही गए। उनका यही कहना था जब ये कि पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट शिमले में नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, डरिए मत। हालांकि रेडा तो जाता था क्योंकि पाकिस्तान प्लेन ऊपर से निकलते थे और ट्रेंचों में हमें जाना पड़ता था, तो थोड़ा सा डर तो लगता था, हम कोई 12 साल के बच्चे थे, लेकिन ऐसा कुछ डेंजर नहीं था। मेरे मदर के लिए मेरा ख्याल हो सकता है ज़्यादा टेंशन था, क्योंकि वो ज़्यादा समझती थी कि मेरे फादर जो है रिस्क टेकर हैं, पीछे नहीं बैठेंगे, जहाँ भी एक्शन होगा वहाँ होंगे। जब आते भी थे टेलीफोन पे बातें कर रहे थे ज़्यादातर, क्योंकि ही वॉज इन टच ऑल द टाइम विद द कमांडर्स इन द फील्ड, ये सब कॉन्फिडेंशियल था, वो अपने कमरे में बंद ही रहते थे, उनका अपना हॉटलाइन था, कभी कभी निकलते थे तो हमें तो कुछ नहीं बताने वाले थे, सो वी कुड ओनली मेक आउट कि सब ठीक ही चल रहा है।
उनके ADC रहे और बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री बने कैप्टन अमरिंदर सिंह लिखते हैं कि हरबक्स सिंह बहादुरी के हर काम को सराहते थे, लेकिन पेशेवर गलती को कभी नहीं माफ करते थे।
1965 में भी जब मेजर जनरल निरंजन प्रसाद आशानुरूप काम नहीं कर पाए तो बीच लड़ाई में भी वो उनको हटाने से नहीं हिचके। उसी तरह जब मेजर जनरल चोपड़ा ने अखनूर के मोर्चे पर अकुशलता दिखाई तो उन्हें भी उनके पद से हटाने में उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ।
हरमाला गुप्ता कहती हैं कि उनका पहला प्यार भारतीय सेना थी, हम दूसरे नंबर पर आते थे।
बहुत दोस्त थे उनके, ज्यादातर तो आर्मी के ही थे, पुरानी बातें दोहराते थे उनके साथ, उनको संगीत का काफी शौक था, पुराने पुराने गाने, हाँ वो अपने आप भी गाने की कोशिश करते थे, चौंधवी का चांद मुझे याद है वो पसंद था, और एक प्यासा के जो गीत थे वो भी बहुत पसंद थे कि हमने फूल मांगे कांटों का हार मिला।
लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला।
उन्हें अपनी गाड़ी खुद चलाने का शौक था, अक्सर वो अपने ड्राइवर को पीछे बैठाकर खुद स्टीयरिंग व्हील पर आ जाते थे।
वो रैश ड्राइवर थे, एक पायलट जीप होती थी उन दिनों में, क्योंकि जब वो आर्मी कमांडर थे, अक्सर ऐसा भी हो जाता था कि वो पायलट जीप के आगे ही निकल जाते थे, क्योंकि वो अपने आप चलाना उनको पसंद था, बहुत रैश ड्राइवर थे। ऑन द होल मेरा ख्याल ही हैड अ गुड लाइफ, उन्होंने कहा आई हैव नो रिग्रेट्स।
निजी जीवन में जनरल हरबक्स सिंह बहुत अनुशासन प्रिय थे, अपने बच्चों से भी वो उसी तरह के अनुशासन की अपेक्षा रखते थे।
काफी स्ट्रिक्ट थे और हमारे साथ भी, क्योंकि वो समझते थे कि हर एक बंदे को कुछ वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, उसके मुताबिक जीना चाहिए, और डिसिप्लिन जरूरी चीज है, यहाँ तक कि खाना नहीं कुछ लंच और ब्रेकफास्ट के बीच, कोका कोला मना था हमें, आपकी सेहत पर असर होगा, दांत खराब होंगे। वैसे बहुत अफेक्शनेट थे, प्यार बहुत करते थे मुझे और बहन को, लेकिन उनके मन में कुछ चीज़ें थी जो फॉलो करनी चाहिए। वो प्रिजनर ऑफ वॉर भी रह चुके थे जापान में, तो वो जानते थे कि खाना उनको 2 साल नहीं मिला तो वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो हमें ये भी सिखाया जाता था, अगर हम कहने लगे कि ये नहीं खाना, कि आप सब कुछ खाइए जो मिल रहा है, खुशी से खाइए।
उन्होंने जीती हुई पाकिस्तान की भूमि पर हर मस्जिद की मरम्मत करवा कर उसे वापस किया,
प्रेयर्स करवाए, सारा कुछ करवाया और वापस दिए, कहते कि ये तो सीक्रेट है। दूसरी बात ये थी कि अगर उनको कोई भी पाकिस्तान सोल्जर की बॉडी मिले बैटलफील्ड में, तो उन्होंने उसी टाइम में फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ उनको दफनाया, तो उनको रिस्पेक्ट था दूसरे सोल्जर का, हालांकि वो सो कॉल्ड एनिमी हो। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो युद्ध था, जो उनके काउंटर पार्ट थे दूसरी तरफ, वो उनके दोस्त थे। लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में और आर्मी में भी ट्रेनिंग सब साथ साथ लिया था। तो मुझे याद है जब सीज फायर के टॉक्स हुए, चिलियन जनरल थे, यूएन ने भेजा था जनरल मरम्बियो, तो उन्होंने पाकिस्तान का जो टेंट था एक तरफ रखा और इंडिया के दूसरी तरफ, बहुत दूरी थी उसमें। तो मेरे फादर जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, कहाँ है जनरल राणा, जो उनके काउंटर पार्ट, मैं उनको मिलना चाहता हूँ, इतने साल हो गए। और वो एक दूसरे से मिले, जप्फी मारी, तो जनरल मरम्बियो कहने लगे, मुझे तो समझ नहीं आप लोग क्यों लड़ रहे हो, ये लड़ाई किस बात पे है।
1965 के युद्ध के बाद दिल्ली के सिख समुदाय ने बांग्ला साहब गुरुद्वारा में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और जनरल हरबख्श सिंह को सम्मानित किया। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को एक तलवार भेंट की जिसका कद उनसे भी बड़ा था। शास्त्री ने अपने बगल में बैठे जनरल हरबख्श सिंह को हाथ पकड़कर उठाया और वो तलवार उन्हें भेंट कर दी। शास्त्री बोले, मैं तो धोती प्रसाद हूं, पर मेरे जनरल धोती प्रसाद नहीं है। वो तलवार आज भी जनरल हरबख्श सिंह के परिवार के पास है। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।